लुका की मार्फत इंजील बाब 5। एक दिन ईसा गलील की झील गनेसरत के किनारे पर खड़ा हुजूम को अल्लाह का कलाम सुना रहा था। लोग सुनते सुनते इतने करीब आ गए कि उसके लिए जगह कम हो गई। फिर उसे दो कश्तियां नजर आईं, जो झील के किनारे लगी थीं। मछेरे उनमें से उतर चुके थे और अब अपने जालों को धो रहे थे। ईसा एक कश्ती पर सवार हुआ। उसने कश्ती के मालिक शमौन से दरखास्त की कि वो कश्ती को किनारे से थोड़ा सा दूर ले चले। फिर वो कश्ती में बैठा और हुजूम को तालीम देने लगा। तालीम देने के अख्तिताम पर उसने शमौन से कहा, अब कश्ती को वहां ले जा जहां पानी गहरा है और अपने जालों को मछलियां पकड़ने के लिए डाल दो। लेकिन शमौन ने एतराज किया, उस्ताद हमने पूरी रात बड़ी कोशिश की लेकिन एक भी न पकड़ी, ताहम आपके कहने पर मैं जालों को दोबारा डालूंगा। ये कहकर उन्होंने गहरे पानी में जाकर अपने जाल डाल दिए और वाकई मछलियों का इतना बड़ा गोल जालों में फंस गया कि वो फटने लगे। ये देखकर उन्होंने अपने साथियों को इशारा करके बुलाया ताकि वो दूसरी कश्ती में आकर उनकी मदद करें। वो आए और सबने मिलकर दोनों कश्तियों को इतनी मछलियों से भर दिया कि आखिरकार दोनों डूबने के खतरे में थीं। जब शमौन पतरस ने ये सब कुछ देखा तो उसने ईसा के सामने मुंह के बल गिर कर कहा, खुदावंद मुझसे दूर चले जाएं, मैं तो गुनहगार हूं, क्योंकि वो और उसके साथी इतनी मछलियां पकड़ने की वजह से सख्त हैरान थे। और जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना की हालत भी यही थी जो शमौन के साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन ईसा ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू आदमियों को पकड़ा करेगा। वो अपनी कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। एक दिन ईसा किसी शहर से गुजर रहा था कि वहां एक मरीज मिला जिसका पूरा जिस्म कोढ़ से मुतासिर था। जब उसने ईसा को देखा तो मुंह के बल गिर पड़ा और इल्तिजा की, ऐ खुदावंद, अगर आप चाहें तो मुझे पाक साफ कर सकते हैं। ईसा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, पाक साफ हो जा। इस पर बीमारी फौरन दूर हो गई। ईसा ने उसे हिदायत की कि वो किसी को न बताए कि क्या हुआ है। उसने कहा, सीधा बैतुल मुकद्दस में इमाम के पास जा ताकि वो तेरा मुआयना करे, अपने साथ वो कुर्बानी ले जा जिसका तकाजा मूसा की शरीयत उनसे करती है, जिन्हें कोढ़ से शिफा मिलती है। यूं ऐलानिया तस्दीक हो जाएगी कि तू वाकई पाक साफ हो गया है। ताहम ईसा के बारे में खबर और ज्यादा तेजी से फैलती गई। लोगों के बड़े गुरोह उसके पास आते रहे ताकि उसकी बातें सुने और उसके हाथ से शिफा पाएं। फिर भी वो कई बार उन्हें छोड़कर दुआ करने के लिए वीरान जगहों पर जाया करता था। एक दिन वो लोगों को तालीम दे रहा था। फरीसी और शरीयत के आलिम भी गलील और यहूदिया के हर गांव और यरूशलेम से आकर उसके पास बैठे थे और रब की कुदरत उसे शिफा देने के लिए तहरीक दे रही थी। इतने में कुछ आदमी एक मफलूज को चारपाई पर डालकर वहां पहुंचे। उन्होंने उसे घर के अंदर ईसा के सामने रखने की कोशिश की लेकिन बेफायदा। घर में इतने लोग थे कि अंदर जाना नामुमकिन था, इसलिए वो आखिरकार छत पर चढ़ गए और कुछ टाइलें उधेड़ कर छत का एक हिस्सा खोल दिया। फिर उन्होंने चारपाई को मफलूस समेत हुजूम के दरमियान ईसा के सामने उतारा। जब ईसा ने उनका ईमान देखा तो उसने मफलूस से कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ये सुनकर शरीयत के आलिम और फरीसी सोच विचार में पड़ गए, ये किस तरह का बंदा है जो इस किस्म का कुफ्र बकता है। सिर्फ अल्लाह ही गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन ईसा ने जान लिया कि ये क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने पूछा, तुम दिल में इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मफलूस से ये कहना ज्यादा आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, या ये कि उठकर चल फिर? لیکن میں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابن آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ مفلوس سے مخاطب ہوا، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنی چارپائی اٹھا کر اللہ کی حمد ثنا کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سب سخت حیرت زدہ ہوئے اور اللہ کی تمجید کرنے لگے، ان پر خوف چھا گیا اور وہ کہہ اٹھے، آج ہم نے ناقابل یقین باتیں دیکھی ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ نکل کر ایک ٹیکس لینے والے کے پاس سے گزرا جو اپنی چوکی پر بیٹھا تھا، اس کا نام لاوی تھا۔ اسے دیکھ کر عیسیٰ نے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھا اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بعد میں اس نے اپنے گھر میں عیسیٰ کی بڑی ضیافت کی، بہت سے ٹیکس لینے والے اور دیگر مہمان اس میں شریک ہوئے۔ یہ دیکھ کر کچھ فریسیوں اور ان سے متعلق شریعت کے عالموں نے عیسیٰ کے شاگردوں سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، تم ٹیکس لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتے ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، صحت مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں بلکہ مریضوں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ کریں۔ کچھ لوگوں نے عیسیٰ سے ایک اور سوال پوچھا، یحییٰ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں، فریسیوں کے شاگرد بھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن آپ کے شاگرد کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، کیا تم شادی کے مہمانوں کو روزہ رکھنے کو کہہ سکتے ہو جب دولہا ان کے درمیان ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب دولہا ان سے لے لیا جائے گا، اس وقت وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ اس نے انہیں یہ مثال بھی دی، کون کسی نئے لباس کو پھاڑ کر اس کا ایک ٹکڑا کسی پرانے لباس میں لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو نہ صرف نیا لباس خراب ہوگا بلکہ اس سے لیا گیا ٹکڑا پرانے لباس کو بھی خراب کر دے گا۔ اسی طرح کوئی بھی انگور کا تازہ رس پرانی اور بے لچک مشکوں میں نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ ایسا کرے تو پرانی مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث پھٹ جائیں گی، نتیجے میں میں اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے جو لچکدار ہوتی ہیں، لیکن جو بھی پرانے میں پینا پسند کرے وہ انگور کا نیا اور تازہ رس پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ پرانی ہی بہتر ہے۔